श्री अरविंद हम लोगों का हाथ पकड़ के किंगडम्स ऑफ लिटिल लाइफ का भ्रमण करवा रहे हैं. इसके बाद ग्रेटर लाइफ आएगा, उसके बाद हेल में डिसेंट होगा, फिर पैराडाइज, उसके बाद मन के क्षेत्र आएंगे. तो लिटिल लाइफ की तीन श्रेणियां हैं और वैसे इसको हम देख सकते हैं जो बिल्कुल ही जीव जंतु, जो बिल्कुल ही जिसको हम लोग कहें इनवर्टिब्रेट, जिसमें थोड़ी भी चेतना नहीं है, और दूसरा जो पशु. पशु में मनुष्य का भी एस्पेक्ट है इसमें, क्योंकि पशु केवल पशु तक सीमित नहीं है जिसको हम फिजिकल पशु कहते हैं, मनुष्यों में भी है. और अगर आप श्री अरविंद के रिकॉर्ड्स ऑफ योग में हम देखते हैं, और हम शब्द यूज भी करते हैं पशुपति, पशुवत, पशु जैसा, तो यहाँ पशु. इसके बाद कौन आता है, जब थिंकिंग माइंड आ जाए. पशु में राक्षस भी एक प्रकार के उसमें आते हैं, लेकिन पशु को राक्षस नहीं कहना चाहिए, पशु मच डिसेंट होते हैं, पर फिर भी उनकी वृत्तियां, पशु की वृत्तियां मनुष्यों में. और पशु के परे आता है असुर. असुर और पशु या राक्षस में क्या अंतर है, असुर में थोड़ी बुद्धि होती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो जिसको आज कहते हैं दिमागी, जो भी, तो वो उस प्रकार का व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, बड़ी डिग्रियां प्राप्त की है, इंटेलिजेंट है कुछ हद तक, लेकिन उसकी वृत्तियां वही हैं राक्षसी और लूटो खसुटो मेरे लिए, और ईगो के सीमित दायरे में वो जीवन को देखता है. उनकी असुर कौन होते हैं, इसका वर्णन गीता में बड़े सुंदर ढंग से लिखा गया है कि जो केवल समझते मैं ही हूँ, मेरी इच्छाओं के लिए संसार बना है, मेरी कामनाओं के लिए जीवन है, तो वो असुर होते हैं. तो अभी हम लोग अभी पशुतुल्य जीवन की ही बात कर रहे हैं, और स्पष्ट ही इसमें हम मनुष्य को तो देखते ही हैं उस प्रकार का जीवन. पेज नंबर 144 एक कंटिन्यूएशन है. The narrow horizon of the days was filled. The narrow horizon of their days was filled with things and creatures that could help and hurt. The world's values hung upon their little self, isolated, crammed in the vast unknown. जो पशुतुल्य राक्षसी, जो योनि, इसको योनि कहा गया है हम लोगों के उसमें, तो उसकी पहचान क्या होती है, वो केवल और केवल इस तरह से देखते हैं कि इस व्यक्ति से मुझे क्या फायदा हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है, यही उनका क्राइटेरिया है. तो उसी दृष्टि से वो लोगों को जज करते हैं, उनके अंदर और कैपेसिटी नहीं होती. और संसार की वैल्यूज, भगवान का कृत्य, वो कैसे समझते हैं, केवल मेरे साथ क्या हुआ. अगर मान लीजिए उनके जीवन में कुछ ऐसा हो जाए जो उनकी कामनाओं को चोट पहुंचे, तो भगवान बड़े खराब हैं. मैं तो नहीं हूं खराब, भगवान का जॉब डिस्क्रिप्शन है मेरी देखभाल करना. और इस तरह से वो जीवन को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, संसार को देखते हैं. आइसोलेटेड, क्रैम्ड इन द वास्ट अननोन, विशालता से उनको बहुत डर लगता है, तो क्या होता है, अकेले पड़ जाते हैं. क्योंकि अगर आपकी ऐसी सोच रहेगी, समझ रहेगी, तो आपकी मित्रता नहीं हो पाएगी, आप बहुत ही एक सीमित दायरे में बंद हो सकता है. सीमित दायरे में आप राजा हो जैसे अपने घर में, लेकिन आपका दायरा बहुत सीमित हो जाएगा. टू सेव देयर स्मॉल लाइव्स फ्रॉम सराउंडिंग डेथ, दे मेड अ टाइनी सर्किल ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द सीज ऑफ द ह्यूज यूनिवर्स. तो मित्र कौन है, भाई मुसीबत में जो मेरी सहायता करेगा, ऐसे लोग हैं जो बड़ा ऐसे नंबर रखते हैं अपने फोन पर, और बस उसी से उनको मतलब है. यहां तक कि वो कुछ करें ये भाव नहीं आएगा, लेकिन लोग मेरे लिए कुछ करें, केवल सीज ऑफ डेथ. अब डेथ कहाँ नहीं है, चारों तरफ है, किसी न किसी रूप में है. तो यही उनकी सोच होती है, यही उनकी पहचान होती है. दे प्रेड अपॉन द वर्ल्ड एंड वेयर इट्स प्रे, बट नेवर ड्रीम टू कॉन्कर एंड बी फ्री. अब उनके लिए संसार केवल एक प्रेड अपॉन, यानी एक शिकार के रूप में है. अगर उनकी कभी मित्रता हो जाती कोई ऐसे व्यक्ति से जो मान लो पॉलिटिशियन, या पॉलिटिशियन किसी की हेल्प नहीं करते पर लगता है, तो बड़े इससे खुश होते हैं कि अरे मेरे नेट में ये भी पकड़ा गया. और उसी तरह से वो उनके प्रे भी होते हैं. गॉडफादर फिल्म है ना, उसमें इसका क्लासिक डिस्क्रिप्शन है, इंग्लिश वाली गॉडफादर, तो उसमें यही डिस्क्रिप्शन है, उसी पर बनी थी शायद हिंदी में धर्मात्मा, आई डोंट नो. पर मुख्य यह है कि ओरिजिनल माफिया डॉन्स की कहानी है. पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, ढूंढते हैं कोई व्यक्ति, जैसे वो बिल्कुल ही ओरिजिनल स्टोरी तो इसमें कर्ण और दुर्योधन की है, सेम स्टोरी कि भाई कोई पैसों की जरूरत है, अचानक उसको पैसा दे देंगे अनकंडीशनली, तो क्या होगा, कृतज्ञ महसूस करेगा. उसके बाद जब तकलीफ हुई, उसके बाद एक दिन वो कहेंगे ये गन पकड़ो और मेरे शत्रु का नाश करो. ओरिजिनल माफिया डॉन कर्ण और दुर्योधन की कहानी है. लोग बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं कर्ण को, ये ठीक है बेचारा तो है, लेकिन वो बेचारा इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी मृत्यु ऐसे हुई, बेचारा इसलिए कि इतनी बड़ी संभावना लेके आया व्यक्ति किसके हाथों बिक गया. एक्चुअली ही सोल्ड हिमसेल्फ, सोल्ड हिज सोल टू दुर्योधन जस्ट फॉर मनी. देखा जाए तो इट दैट इज मेक्स हिम बेचारा. कोई बड़ी बड़ी दोस्ती के कारण, कोई भी दोस्ती इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आप अन्याय अत्याचार और जो अधर्म है वो कर रहे हो दोस्त के नाम पर. ये कैसी दोस्ती है, तो मूर्खतापूर्ण बात है. तो ये यहाँ पे इस तरह के लोग हैं वो, लेकिन वो कॉन्कर एंड बी फ्री, मैं अपने ऊपर विजय प्राप्त करूं और मैं स्वतंत्रता मुक्ति अपने अंदर मुक्त हूं, इसका उनको विचार नहीं आता. ओबेइंग द वर्ल्ड पावर्स हिंट्स एंड फर्म टैबूज स्कैंटी पार्ट दे ड्रू फ्रॉम अ रिच स्टोर. उनके अंदर प्रकृति जैसे ले जाती थी वैसे वो करते थे, लेकिन उसमें भी जैसे एक पशु होता है ना, उसकी सीमाएं होती हैं, सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेगा. कितना भी भयानक पशु हो सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेगा, अनलेस वो लीच है तो उसमें भी आप उसकी टेरिटरी में जाएंगे तो आपको पकड़ेगी. तो उसी तरह से इन ये लोग भी अपनी टेरिटरी में, आप कहीं भी चले जाइए, पांडिचेरी में चले जाइए, एक जगह है जहाँ पर वो सारे वो कहते हैं ना एम फैक्टर और जो भी उसके साथ गुंडे वो रहते हैं. मैं एक बार भूल से गया, भूल से मतलब कि ये इधर से शॉर्टकट निकल जाऊँगा मैं, ये शायद ये बहुत भीड़ थी तो आई टुक अ टर्न टू द लेफ्ट एंड सून आई रियलाइज कि ये कौन सी जगह है. पर थोड़ा एडवेंचरस, मैंने कहा अभी इसके मैं एंड तक एक्सप्लोर करूँगा, तो एक्सप्लोर किया एंड तक, बड़ी खतरनाक जगह, फिर आप निकल करके आ जाए, मेरे पास कुछ था भी नहीं वैसे भी एंड दे डोंट, लेकिन पता चलता है ये वो, लेकिन वो भी अपनी वहाँ पर रहेंगे और वो वहाँ जाएंगे जहाँ उनका काम सदैव है. तो उनकी अपनी टेबूज हैं, बाउंड्रीज हैं. और अगर ऑफकोर्स स्पिरिचुअल व्यक्ति है जो अंदर में भगवान को धारण करे है, उसको सुरक्षा है, तो दे कैन नॉट हार्म. लेकिन इस टैबूज का ये कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उस रेड टेरिटरी को क्रॉस करते हैं तो उनके लिए खतरनाक होता है. देखिए नक्सल एक एरिया में थे, वहीं पर उन्होंने नक्सल बाड़ी और क्या क्या उन्होंने बनाया हुआ था, विलेज नियम. अब लोग कहते थे अगर ये इन्वेड नहीं कर सकते हैं, वो उनको भी पता है कि इसके आगे मैं जाऊँगा, जहाँ भी सभ्यता के बीच में जाऊँगा तो आई विल बी हिट वेरी हार्ड. अब तो चलो उनका वहीं पे समाप्ति हो गई. देयर वॉज नो कॉन्शियस कोड एंड नो लाइफ प्लान. वहां कोई नियम नहीं है, वहां बस यही नियम है, माइट इज राइट, पकड़ो छीनो झपटो, यही वहां का नियम है. तो नो कॉन्शियस कोड, नो एंड नो लाइफ प्लान. द पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग ऑफ ए लिटिल ग्रुप फिक्स्ड ट्रेडिशनल बिहेवियर्स लॉ. यही वो लोग थे जिनको भीमसेन जाके चेंज करते हैं. ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जहाँ घटोत्कच का जन्म और हिडिम्बा और उनके, वो उनका कोई नियम नहीं हो, तो नरभक्षी हैं तो खाने चले आते हैं, तो वहाँ पर भीमसेन को डिफीट करते हैं, हिडिम्ब को मारते हैं, हिडिम्बा होता है, हिडिम्बा से विवाह करते हैं. बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी है. और उनको और वो उसका राज्य जो होता है उस दुर्गम वन में वो भीम ऑक्यूपाई करते हैं. इट इज़ एक कहानी है जो ह्यूमेनाइज करने की चेष्टा है. ये कहानी रिफ्लेक्ट करती है कि भाई आप वहाँ ह्यूमेनाइज कर रहे हो. ये अभी भी जगह जगह पर होता है और होना चाहिए. इग्नोरेंट ऑफ सोल सेव एज ए रेथ विद इन टाइड टू ए मैकेनिज्म ऑफ अनचेंजिंग लाइव्स एंड टू अ डल यूजुअल सेंस एंड फीलिंग्स बीट They turned in grooves of animal desire. तो उनके लिए जीवन में, उनसे अगर आप पूछेंगे सोल है, हाँ हाँ सोल से उनका मतलब होता है भूत, भूत प्रेत. रीत विद इन निकली चली गई, वो डरते हैं आत्मा, आत्मा का घर, आत्मा इज सो वंडरफुल अगर हम अपने स्क्रिप्चर, लेकिन वो इसी को आत्मा समझते हैं, हर डरावनी चीज वो आत्मा है और उसी के प्रति और बंधे होते हैं अनचेंजिंग लाइव्स उनके जीवन में, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, पूरे जीवन उनका एक ही पैटर्न में, एक ही ग्रुप में बंधा हुआ चलता जाता है। सुबह में ये डिस्कशन है कि रात को क्या बनेगा खाने में, रात को ये डिस्कशन है सुबह में क्या बनेगा ब्रेकफास्ट में, और उसी धुरी में उनका जीवन चलता रहता है। ग्रूव्स ऑफ एनिमल डिजायर इन वॉल्स, एनिमल डिजायर्स क्या है, भोजन और मैथुन, ये दो एनिमल के डिजायर, थोड़ा बहुत वो एक घर भी एक बना ही लेते हैं कहीं ना कहीं, घरौंदा अपना, बस रोटी कपड़ा मकान और संतति ये है। इन वॉल्स ऑफ स्टोन फेंस्ड राउंड दे वर्कड एंड वार्ड डिड बाय ए बैंडेड सेल्फिशनेस ए स्मॉल गुड। ग्रुप बना, ग्रुप लाइफ होती इनकी, उसमें वो रहते हैं और वो काम भी करते हैं, तो कोई खेतीबाड़ी भी कर दी, भोजन चाहिए, हंटर्स भी हैं, जाकर के अगर उन पे अटैक हुआ या उनको ऐसा लगा तो वो जाकर के आपका आपको हानि भी पहुंचाएंगे। और रॉट ए ड्रेडफुल रॉन्ग एंड क्रूअल पेन ऑन सेंटिएंट लाइव्स एंड थॉट दे डिड नो इल। ये आती ना, ये हम लोग ओडिसियस देखने गए थे, उसमें क्या दिखाते हैं, वो बंदा जो राक्षस है साइक्लोप क्या नहीं करता है, लेकिन अंत में जब उसको ओडिसियस अंधा कर देता है, उसकी जान छोड़ दी है, वो कहता है हे विधाता, मेरे देवता, मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये लोगों ने तूने जिंदगी भर लोगों को बड़ा, लोगों बड़ी उसमें सिंपैथी आ रही थी, नहीं वो उनके लिए यही है, यही जीवन है, वो गलत नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं आपको मिलेंगे, उन कभी मत समझाने की चेष्टा कीजिए, तुम भी गलत हो सकते हो। ये आता है जब मनुष्य प्रबुद्ध होता है, तब उसको ये आत्म अवलोकन की कैपेसिटी आती है। बहुत से मनुष्य हैं उनमें आत्म अवलोकन होता ही नहीं है, जीरो होता है, तो उनके लिए वो सही है हमेशा और आप गलत हो। मेरे पास उनसे डील करने का बहुत सिंपल फार्मूला है जो मैं शेयर कर सकता हूँ, और फार्मूला ये है, उनसे कहो भैया मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बस। अब बोले इसमें तो हम नीचे हो गए, नहीं नीचे नहीं हो गए आप आपने मार्ग ढूंढ लिया, उनसे आप कुछ भी नहीं कबूल करवा सकते हो, लड़ोगे, लड़ने का कोई पॉइंट नहीं है, मारा पीटी पर आओगे, क्या क्या आपको आगे बढ़ना है, आई एम सॉरी उनके अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए 100 सॉरीज एंड मूव ऑन, बिकॉज क्योंकि वो अब कोई बाहर का व्यक्ति हो तो उससे आप लड़ो भी, अपना ही हो आप क्या करोगे उनसे, क्यों झगड़ा करोगे। तो ये सिंपल तरीका है, क्योंकि उनको यही बस अच्छा लगता है, देखा मैं सही हूं, और वो अपने जीवन में केवल केवल सही होते हैं वो अलग बात है। देखिए दुर्योधन क्या कहता है अंत में भी, दुर्योधन की माँ गांधारी कितना प्रभावित हो जाती हो, कहती केशव ये क्यों करवा दिया तुमने। अब केशव ने तो यहां तक कहा था 5 गांव दे दो, ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन वो सब भूल जाते हैं, उनके लिए ये सब गलत है। और अभी भी ऐसे लोग हैं जो सिंपथाइज करते हैं कौरवों के साथ, कहते हैं देखो उनके साथ ऐसा क्यों किया। सो इस तरह की जो मानसिकता है वहां पे आप नहीं समझा सकते कि दे आर डूइंग इल ऑन सेंटिएंट लाइव्स एंड थॉट दे डिड नो इल, आर्डेंट फ्रॉम द सैक ऑफ हैप्पी पीसफुल होम्स। क्या लिख रहे हैं, अच्छे खासे लोग घरों में रह रहे हैं अपने जीवन में, ये वो होते थे जो राक्षस, इस तरह के लोग जो जा करके उसको नष्ट करते थे, लूटते थे, जलाते थे, एक समय ये चीजें थी फिल्मों में, अभी भी कभी कभी देखेंगे, वो हिंदी फिल्मों में तो कहीं कहीं दिखाया गया है कि वो सारी झोपड़ियां जला दी, सारे इसको जला दिया, मार दिया। तो आर्डेंट फ्रॉम द सैक ऑफ हैप्पी पीसफुल होम्स एंड गॉर्ज विद स्लॉटर प्लंडर रेप एंड फायर। ये थे हमारे महान मुगल एम्परर्स, क्योंकि उनके धर्म में जो उन्होंने सीखा वही किया, उनका दोष नहीं है, भाई यही सीखा होगा उन्होंने, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि जो आदमी सीखता है वही करता है। कोई भी भारतीय राजा नहीं गया यहां से इराक तक डिस्ट्रॉय करने के लिए, रेप करने के लिए, प्लंडर करने के लिए। भारत से कौन गए, गुरु नानक जो गए वहां तक, आगे तक ऑलमोस्ट ईरान तक, काबा तक गए। भारत से कौन गए, बुद्ध की शिक्षा लेकर के लोग, ये हुआ भारत से, प्लंडर करने ये सब नहीं गए, लेकिन लोग आए प्लंडर करने, रेप, तो ये कौन थे, ये थे मतलब उनके कृत्य बता रहे हैं कि कौन है, आपको कुछ पढ़ने की, कौन आएगा अगर वो आप प्रेरित हो के आए अपने रिलीजन से ये करने के लिए। भारत का कोई भी रिलीजन आप देख लीजिए, कोई भी, हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जिनकी जिनकी रूट्स है, दे नेवर डिड दैट, परंतु ये जो सभ्यता थी या असभ्यता थी, इनके लिए यही जीवन था। दे मेड ऑफ ह्यूमन सेल्व्स देयर हेल्पलेस प्रे, ए ड्रोव ऑफ कैप्टिव्स लेड टू लाइफ लॉन्ग वो। इसका एक उदाहरण तो ये है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में सारे जो मुगल्स आए थे, इन्होंने महाराष्ट्र से पकड़ करके बंदी बना करके लेके गए थे, ये सारे हिंदू हैं ओरिजिनली, तो ले तो गए, अब उन्हें कहीं ना कहीं अपनी सभ्यता की स्मृति को रखा हुआ है, चिन्ह भी रखे हैं, हालांकि दे आर ऑल कन्वर्टेड, जबरदस्ती, और इनको क्या हुआ कि इनको ले क्यों नहीं गए एकदम दूर तक मुगल, इसलिए नहीं ले गए क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी आपदाएं आई, तो अंत में उन्होंने कहा कुछ को छोड़ दो, कौन, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो किसको छोड़ दिया, इन स्लेव्स को छोड़ दिया, रियल स्टोरी बता रहा हूं मैं, और वो वहां से चले गए आगे। अब ये तो स्लेव्स थे, इनको करना था कुछ, क्या करेंगे, तो वहीं पर उन्होंने वो रेगिस्तान में अपना एक जीवन बसाया बनाया, ये इतिहास है, तो इनके इनकी यही ये लोग करते रहे जो इस प्रकार की मनुष्यता थी। ए ड्रोव ऑफ कैप्टिव्स लेड टू लाइफ लॉन्ग वो और टॉर्चर ए स्पेक्टिकल मेड एंड हॉलीडे, ये यूरोप में भी हुआ है, ग्लेडिएटर्स, कई बार लगता है इसको सिविलाइजेशन किस क्राइटेरिया से बोला जाता है, और इसकी अभी तक उनके अंदर इसकी छींट नहीं, अच्छे खासे भरे हुए हैं इससे, बाहर से जरूर बहुत अच्छे सूट पैंट पहनते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं बहुत अच्छे से, हम लोग बड़े इंप्रेस होते हैं क्योंकि वो एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इनके थोड़ा सा बिलो द सरफेस जाएंगे तो आप देखेंगे, तो ये इस प्रकार की सभ्यताएं। ए ड्रोव ऑफ कैप्टिव्स लेड टू लाइफ लॉन्ग वो और टॉर्चर ए स्केप्टिकल और टॉर्चर ए स्पेक्टिकल मेड एंड हॉलीडे मॉकिंग और थ्रिल्ड बाई देयर आयरन विक्टिम्स पैंग्स एडमायरिंग themselves as titans and as gods। ये देखिए दो महाभारत का काल है, यहां पर कॉम्पिटिशन होता है, कॉम्पिटिशन क्या होता है, कौन है सबसे सशक्त, और कहाँ होता है वो, रंगशाला। ये महाभारत काल कितने पहले की बात है, आप सोचिए श्री कृष्ण का अगर बर्थ से लें तो 4,500 कम से, एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट उस समय की बात है, तो रंगशाला में क्या होता है, सब आके अपने अपने कर्तव्य दिखाते हैं, वो भी होती है लड़ाई भी, वो दुर्योधन और भीमसेन के अंदर गदा युद्ध भी होता है, लेकिन कभी भी किसी की मृत्यु नहीं होती है, आपको रोक दिया जाता है। ग्लेडिएटर्स कितने साल पुरानी बात है, अब देखिए जहां आपको फाइट अनटू डेथ, मरने तक, हम लोग कहानी सुनेंगे जहां शेर को छोड़ दिया जाता और टेस्ट किया जाता था, अभी भी जो बुल फाइट है वो बंदा, मतलब कौन मर जाएगा उसमें, इसका कोई वो नहीं है। तो यही अंतर होता है सभ्यता का कि क्या पहचान है हमारी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले राक्षसों को वश में करके ह्यूमनाइज कर दिया था, किसने किया था, श्री राम ने प्रारंभ कर दिया था ये काम। प्राउडली दे सैंग देयर हाई एंड ग्लोरियस डीड्स एंड प्रेज देयर विक्ट्री एंड देयर स्प्लेंडिड फोर्स, ये नहीं कि केवल मार देते थे उसके बाद वो गीत गाते थे, नाचते थे, अरे देखो हमने इसको हराया। गीता में पंक्ति आती ना, असुर की क्या पहचान होती है, एक ही पहचान होती है, वो कहता है आज मैंने इतना कमाया है, कल इतना कमाऊंगा, आज मैंने अपने शत्रुओं को हराया है, कल औरों को भी हराऊंगा, मैं राज्य करूंगा, मैं भोगूंगा, ये असुरों की पहचान गीता में बताई गई है। एन एनिमल इन द इंस्टिंक्टिव हर्ड पुश्ड बाई लाइफ इंपल्सेस Forced by common needs, ये मनुष्यों का description है, ये animal का नहीं है, animal type humanity, क्योंकि यहाँ देखिए ego, animals don't have an ego, पर उनका वर्णन देखिए, an animal in the instinctive herd, क्या होती है instinctive herd? अरे वो आपको बंगाल में, तब के बंगाल अब शायद सुधर रहा होगा, वहाँ के बारे में ये प्रचलित चीज़ थी, मैं कलकत्ते में रह चुका हूँ, मैं जानता हूँ इसमें कितनी सच्चाई है, कि मान लीजिए कोई एक सज्जन की किसी से लड़ाई हो गई, हाथापाई तक बात तो फट से चली आएगी। बाकी लोग जो आ रहे हैं ना, वो क्या करेंगे, वो जो पिट रहा है उसको दो थप्पड़ और मार देंगे और चले जाएंगे। ये प्रिज्यूम्ड है। अगर उसकी भाषा दूसरी हुई तो यू आर इन फॉर ट्रबल, क्योंकि ये प्रिज्यूम कर लिया गया कि ये जो है ये हमसे अलग है, देयरफॉर ही हैज टू बी रॉन्ग। ये क्या है, एनिमल इन एन इंस्टिंक्टिव वर्ल्ड। आप बहुत सुंदर जगह भी हैं, लेकिन ये एक प्रकार की मानसिकता मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म में डेवलप होती है। आप देखिए उसमें क्या मानसिकता, यही है कि हमसे भी जो हमारी आइडियोलॉजी को नहीं मानता है वो मेरा शत्रु है, उसको मार देना हटा देना ये हमारा काम है। वो ये नहीं देखते हैं कि भाई सही हो गलत हो सकता है देयर मे बी रिच मैन हु इज वेरी नाइस वेरी हेल्पफुल वेरी काइंड, पर ये नहीं देखा जाता है। तो यहां पर एनिमल इन द इंस्टिंक्टिव हर्ड पुश्ड बाय लाइफ इंपल्सेस फोर्स्ड बाय कॉमन नीड्स ईच इन हिज ओन काइंड सॉ हिज ईगोज ग्लास। ये कौन है, मेरे जैसा है, क्यों देखभाल में देखने में भी मेरे जैसा लगता है और वो मेरी ही भाषा बोलता है, बस हो गया, कपड़े भी मेरे जैसे पहनता है। एन एनिमल इन एन इंस्टिंक्टिव हर्ड ईगोज ग्लास। अगर आप भाषा बोल रहे हैं सेम तो वो मेरा अपना है, चाहे आप महादुष्ट व्यक्ति हो और भाषा आपकी अलग है वेशभूषा अलग है तो उसे हम एकोमोडेट। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग पांडिचेरी आए अपनाना, और कितना हमें ये कि भाई हम नहीं हैं वैसे, भिन्न हैं, भिन्न क्या ये सब मेरे अपने, ये परिवर्तन लाने की जरूरत है। ऑल सर्व द एम एंड एक्शन ऑफ द पैक, वहां सही गलत नहीं है, जो आपको सब कर रहे हैं वही आपको करना है। दोज लाइक हिमसेल बाई ब्लड और कस्टम किन टू हिम वेयर पार्ट्स ऑफ हिज लाइफ इज एडजंक्ट सेल्व्स। अब याद आ रहा है ना सब, ये देखिए समाज का, जैसे वो लोग हैं जो उनके भगवान मेरे भगवान जैसे हैं। अब भारतवर्ष में ये तो विविधता का कमाल है, आप ये क्राइटेरिया नहीं लगा सकते, लेकिन आपके भगवान सेम, आपकी भाषा सेम, लाइक आपका खान पीन सेम, बस और क्या चाहिए, आप हमारे जैसे हमारे दोस्त हैं। हिज पर्सनल नेबुलास कॉन्स्टिट्यूएंट स्टार्स, उसमें एक मुखिया रहेगा ग्रुप का और वो सब उसके स्टार्स हैं, मतलब वो उनको जगह देगा। सैटेलाइट कंपेनियंस ऑफ हिज सोलर आई, इसका टिपिकल एग्जाम्पल एक समय होता था, अब तो ये सब टूट गया। परिवार में हिंदी में वर्ड यूज है मुड, मुड इज मुखिया, परिवार का एक मुखिया होता था, वो चाहे ग्रैंड दादाजी हों या ताऊ जी हों, उन्होंने कह दिया तो सबको बात माननी है। आप ये नहीं कह सकते कि आप गलत बोल रहे हैं। किस दशा में गिर गया था भारत एक समय, ये कॉन्टेमिनेशन फ्रॉम दी अदर, नहीं तो एक समय तो हमारे यहाँ प्रश्न करना एक नचिकेता प्रश्न करता अपने पिताजी से, अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से, इट वॉज अवर सिविलाइजेशन। लेकिन एक टाइम आया नहीं, घर के बड़े कह रहे हैं वो सही है। देखिए क्यों चेंज अब ये आ रहा है, क्योंकि इस अवस्था से हमको निकलना है, इंडिविजुअलिटी फॉर्म होनी है। ए मास्टर ऑफ हिज लाइफ्स एनवायरनमेंट, ए लीडर ऑफ अ हडल्ड ह्यूमन मास, सब डरे हुए हैं उनसे, पिक्चरों में दिखता है ना बहुत सी ऐसी माफिया डॉन की पिक्चर, जो पॉलिटिशियन है वो कंट्रोल कर रहा है इन सबको, हडल्ड मास हर्डिंग फॉर सेफ्टी ऑन ए डेंजरस अर्थ। ये लोगों के लिए दुनिया केवल, क्योंकि उनकी जो वृत्ति होती है वही हम संसार में देखते हैं, तो लगता है कि ये सब मेरे पीछे पड़े, हमको साथ रहना है, साथ हम नहीं रहेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, तो इस वृत्ति से वो लोग रहते हैं। हडल्ड ह्यूमन मास हर्डिंग फॉर सेफ्टी ही गैदर्ड देम राउंड हिम एज इफ माइनर पावर्स। आप देखेंगे इस तरह के लोग ग्रुप्स में रहते हैं, गेटोज जिसको कहा जाता है, या इनके अपने वहां पे, क्यों उनको उसमें सिक्योरिटी लगती है, क्यों सिक्योरिटी का असुरक्षा क्यों है, क्योंकि उनके अंदर डर है कोई आपको कुछ नहीं करने वाला है। लेकिन असुरक्षा की भावना इतनी स्ट्रांग होती है कि वो ये ग्रुप में, और ग्रुप में जब वो आते हैं वही भाषा वही चीजें हो रही हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हमारे, उनको भगवान को भी बुलाना है तो जोर से चिल्ला के बुलाएंगे, जिससे सबको पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर हम हैं, हम ही हम हैं। तो भारत में क्या है, मेडिटेशन करो, अंदर जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन किस पथ पे। इंडिया इज एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एडवांस सिविलाइजेशन, मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि मेटीरियली ओके वी हैव टू कैच अप, वी आर कैचिंग अप, पर सिविलाइजेशनल वैल्यू इतनी एडवांस्ड है कि अभी तो संसार को बहुत कुछ सीखना है। ये आवश्यक है हम लोगों को इसका स्मरण रखना और याद रखना। तो कितनी बार बाहर जाता हूँ तो बहुत प्राउडली बोलता हूँ आई कम फ्रॉम इंडिया, झेल पाओगे? ये आपकी पहचान है, आप भारतीय हो, और इसके लिए भी उन्होंने क्या किया हुआ है। आप वेस्ट में जाएंगे तो उनको भी ये बात पता है, तो वो क्या करते हैं, आपको इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी को एक साथ क्लब कर देते हैं और बोलेंगे क्या एसीआई या ऐसे कुछ। और जो पाकिस्तानी है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, वो बेचारे क्या करेंगे, क्योंकि नाम खराब होगा, तो दे आर ऑल्सो हैप्पी कि भाई हम इंडियन हैं, कम से कम इंडिया का नाम चलता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि उनके अंदर भी ये कहीं ना कहीं भाव होता है। वहां तो आप ग्रुप ऐसे नहीं बना सकते हैं, हालांकि प्रयास होता है। सो ये एक इंस्टिंक्टिव हर्ड, हर्डिंग फॉर सेफ्टी ऑन ए डेंजरस अर्थ, ही गैदर्ड देम राउंड हिम एज इफ माइनर पावर्स टू मेक ए कॉमन फ्रंट अगेंस्ट द वर्ल्ड, और वीक एंड सोल ऑन एन इनडिफरेंट अर्थ। कोई जरूरी नहीं कि हर समय आप सशक्त हो। अब आप जाएंगे अगर बाहर में, तो यही जो अलग अलग रिलीजन्स के अनुयायी हैं उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब वहाँ पे आप ऐसी ग्रुप कम्युनल लाइफ बनाना मुश्किल है, वहाँ दूसरी कम्युनिटीज बनी हुई हैं। एज ए फोर्ट्रेस फॉर हिज अनडिफेंडेड हार्ट, और एल्स टू हील हिज बॉडीज लोनलीनेस। अब ऐसे भी हैं उसमें जो बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं, वो क्या करते हैं, और एल्स टू हील His body's loneliness. तो ये लोग खोज लेते कहीं, उनको कोई चाहिए जो आपको reinforce कर सके, एक सुरक्षा का भाव दे सके। In others than his kind, he sensed a foe. आपकी भाषा नहीं बोलता, आपके religion का अनुयायी नहीं है, आप जैसा नहीं दिखता, वो आपका शत्रु है। As simple as that. He sensed a foe, an alien, unlike force, to shun and fear. अब अमेरिका में तो एलियन ही बोलते हैं, एक्चुअली बोलते हैं। आप अगर अप्लाई करेंगे वीजा के लिए, पूछते हैं आर यू एन एलियन, अब कंप्यूटर ने भी हमने कहा भैया हम एलियन, हम सोचते थे दूसरे प्लैनेट से आएंगे, आप अमेरिका के बाहर से आ रहे हो तो एलियन हो। देखिए मानसिकता तो वही है, चाहे वो बाहर में पैसे कमाने के लिए, धंधा करने के लिए, वो बड़े नाइस और डेमोक्रेसी, अंत में द वैल्यू इज द सेम। Not like me. I mean, there are very nice people. बहुत अच्छे लोग हमेशा हर जगह होते हैं, लेकिन जो मुख्य चीज है वो ये होती है, भैया भारत जैसी कोई जगह नहीं है, जितनी स्वतंत्रता है कुछ ज्यादा ही है, लेकिन सच में यहाँ पे आप अपनी अभिव्यक्ति, अपना जीवन अपने हिसाब से जीते हो। A stranger and adversary to hate and slay, or he lived as lives a solitary brute at war with all. He bore his single fate. या एक जीवन अकेला, सब दुनिया आपके अगेंस्ट है, लेकिन वो तैयार है, रिवॉल्वर लेके चल रहा है कि भाई आप मेरे से मैस करोगे तो मेरे पास एक ही चीज है, क्योंकि अब वो सॉलिटरी भी हो जाते हैं, कौन दोस्ती करेगा। पर ब्रूट, ब्रूट कौन होता है, एक उदाहरण देता हूँ, एक जगह श्री अरविंद ह्यूमन साइकिल में कहते हैं इकोनॉमिक बार्बेरिज्म, धनी लोग लेकिन बारबेरियंस हैं सोच में समझ में। दूसरा, एक बार की बात है, ये वर्ड ब्रूट श्री अरविंद यूज करते हैं एक ही बार, उनको हल्का सा वॉइस रेज करते हुए, तो वो होता है आश्रम के कंटेक्स्ट में किसी ने माँ सूप सेरेमनी में सूप पी करके पास सबको देती थी। भारतवर्ष में इसको क्या कहा जाता है, प्रसाद, भगवान को चढ़ा के हम लेते हैं आइडल, जहां पता नहीं गंदगी का क्या है, यहां मां लेकर के एज एन अवतार, हम लोग तो चरणामृत को प्रसाद समझ के पीते हैं। और किसी ने, डॉक्टर थे आश्रम में आए, उन्होंने कहा आना हाइजीनिक, कैसे कैसे लोगों को बुलाया। श्री अरविंद को यह बात किसी ने बताई, श्री अरविंद ने कहते हैं अंडर इज ब्रेथ ही सेड ब्रूट्स, और अगले दिन से माँ को कहा यह नहीं सेरेमनी होगी, क्योंकि वो देख रहे थे कि लोगों के अंदर क्या क्या भाव उठ रहे हैं। ब्रूट तो ब्रूट केवल वो नहीं है जो लाठी लेके आप पर लठबाजी कर रहा है, मार रहा है। ब्रूट की सोच ऐसी होती है, ब्रूट अगर देखेगा उसकी समझ ऐसी होगी। ब्रूट की समझ क्या होगी, अगर आप उसको अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं तो वो ये नहीं सोचेगा कि आप कितने अच्छे हैं, कहेगा कुछ तो चक्कर है, आप उससे क्या लाभ लेना चाह रहे हैं। वो इमिजिएटली उसकी सोच वहीं पर जाएगी, क्योंकि वो उससे उसकी सोच ऐसी ही है, ब्रूट्स। तो इस प्रकार की मानसिकता। एट वार विद ऑल ही बोर हिज सिंगल फेट, एब्सॉर्ब्ड इन द प्रेजेंट एक्ट द फ्लीटिंग डेज, नन थॉट टू लुक बियॉन्ड द आवर्स गेन्स और ड्रीम टू मेक दिस अर्थ ए फेयरर वर्ल्ड। जैसे जगत में बेसिकली क्या करते थे, कई बार लोग जैसे यहाँ भी कहते हैं आश्रम में भी, ये खराब है, वो खराब है, ये व्यक्ति। मैं पूछता हूँ भैया, तुम कुछ अगर अच्छा कर सकते हो तो करो, तुम तो अच्छे हो ना, ये मान के चल रहे हो कि यू आर वेरी गुड, एवरीबडी इज बैड, यू आर गुड, ओके एग्रीड, तो यू स्टार्ट मेकिंग द वर्ल्ड बेटर। ये तो करना चाहिए ना अगर आप अच्छे हो। या दूसरा ऑप्शन है कि यू कैन फाइंड अ बेटर प्लेस बट यू मेक द वर्ल्ड बेटर। नहीं, क्योंकि इनके जीवन में इनकी दृष्टि ऐसी ही सीमित होती है। एब्सॉर्ब्ड इन द प्रेजेंट एक्ट द फ्लीटिंग डेज, नन थॉट टू लुक बियॉन्ड द आवर्स गेन्स और ड्रीम टू मेक दिस अर्थ ए फेयरर वर्ल्ड। ये स्वप्न की दुनिया अच्छी हो जाए, इसलिए वो सबको पुल डाउन करते हैं, क्योंकि इनको गहराई में अगर आप जाएंगे, जो लोग सबको बुरा देखते हैं वास्तव में ये चाहते ही नहीं है कि संसार अच्छा बने, क्योंकि प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, कॉलेज में जो पढ़ चुके हैं जानते हैं, कॉलेज में दो तरह के लोग होते थे, एक जो अपना पढ़ाई लिखाई से ध्यान, एक जो बदमाशी करते थे। जो बदमाशी करते थे, बदमाशी एक अच्छी वाली बदमाशी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब ने की, जो गांजा चरस ये सब, वो चाहते थे कि उनके साथ कोई ज्वाइन हो। क्यों ज्वाइन हो, इसमें उनको एक स्ट्रेंथ मिलती थी, उनको ज्यादा मिल ज्वाइंट बने, ज्वाइन एंड मेक ए ज्वाइंट। ये उनकी मानसिकता ऐसी है, उसमें उनको री इन्फोर्स। तो अगर उनको कह दिया जाएगा, मान लो अगर कोई आश्रम के कंटेक्स्ट में, अभी किसी ने बुकलेट ऐसे बना के भेज देना, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब ऐसे लोग एनोनिमस ढंग से भेज देते हैं, तो भाई कुछ नहीं हुआ, तुम ये सब देख पा रहे हो कि कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हारी तो दिव्य दृष्टि होगी, तो भाई तुम ही कुछ कर दो, आश्रम नहीं तो संसार में कहीं जाके उसको थोड़ा बेटर बना दो। लेकिन प्रॉब्लम है उसमें, अगर वो एडमिट करेंगे कि लोगों की प्रगति हो रही है और लोग बेटर हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगी, फिर आएगा भैया मेरी तो नहीं हो रही है। वो फिल्म है ना चलती का नाम गाड़ी, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। तो इससे उनको बहुत समस्या है, उनको एक्नॉलेज करना कि कोई प्रगति कर रहा है, इससे उनके ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, कोई नहीं है, वो भी ऐसी बकवास है, वो भी बेकार है, ये उनका एक सेल्फ डिफेंस होता है, उनको छोड़ देना चाहिए उनको कोई, क्योंकि उनको आप ट्राई करेंगे ना चेंज, तो वो बहुत विकराल और भयंकर हो जाएंगे, क्योंकि उनका ये डिफेंस मैकेनिज्म है, वो और अहंकार में चले जाएंगे। जब वो दूसरों को बुरा दिखाते हैं, जो ग्रेटनेस है कोई भी कहीं पर भी किसी भी केंद्र में, उसको बुरा दिखाने में उनको संतोष मिलता है, क्यों, अरे वो भी तो ऐसे ही है जैसा मैं हूँ। अगर एक्नॉलेज करेंगे नहीं ये मुझसे एक कदम आगे, तो आपको एक कदम लेना होगा, वो तो आप चाहते नहीं हो। है कैपेसिटी है, हर कोई प्रोग्रेस कर सकता, यू डोंट वांट। तो ये मानसिकता उनकी होती, इस कारण फिर वो कहते हैं अच्छा जगत होगा, सुपरमेंटल वर्ल्ड आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, अगर आएगा तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, कि मैं तो भाई जैसा हूं वैसे ही हूं। मेरे से कई बार लोग पूछते हैं आश्रम के बारे में, मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग हैं और सब अलग अलग लेवल पे प्रगति कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आप किनारे पर खड़े मत रहिए। चलना है तो आइए, और किनारे पर खड़े होके कौन स्विमर कितना आगे गया है, कौन, डोंट वेस्ट योर टाइम, इट जस्ट ए वेस्टेज ऑफ टाइम। यही करना है तो कहीं भी जाके कुछ काम करो, कुछ यूजफुल करो संसार के लिए। बट देर आर पीपल लाइक दैट प्लेंटी, क्योंकि वो लेजीनेस, इनर्शिया, तमस, वो नहीं बढ़ना तो पीछे नीचे खींचना। इस पर एक बड़ा सुंदर एक जोक है, मतलब क्रैब जो केकड़े आते हैं ना डिब्बे, तो उसमें अलग अलग क्रैब ढक्कन लगा है, उस पर लिखा है अमेरिकन चाइनीज, पर इंडियन क्रैब पे कोई ढक्कन ही नहीं लगा था। तो किसने कहा कि भाई ये जो इंडिया से जो केकड़े आ रहे हैं उन पर ढक्कन क्यों नहीं लगा है? कहते जरूरत नहीं है, ये एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, ये आने ही नहीं देंगे, दूसरे को आगे ही नहीं बढ़ने देंगे। सच है ये, हम लोगों की एक बड़ी विकृत मानसिकता है, आप दूसरे को नहीं आगे बढ़ने, भैया उसको जाने दो, आपकी नजरों में वो दुनिया का सबसे गिरा आदमी होगा, वो जा रहा है आगे, उसको बढ़ने दो, उसको अपने हिसाब से। नहीं, क्योंकि हम नहीं बढ़ सकते तो हमको उसको खींच के नीचे आपको लगता है हाँ मेरे जैसे ही है, तो ये वो मानसिकता है। None thought to look beyond the hours gains or dream to make this earth a fairer world. Hours gains क्या है? आज डाइनिंग रूम में रसगुल्ला मिल रहा है, hours gains बस यही है, आज बहुत अच्छा खाना बना था, hours gains. और felt some touch divine surprise his heart. क्या अद्भुत पंक्ति है, वो हुआ होगा ना, कईयों को हुआ है कोई ना कोई चीज जो कहीं आपको स्पर्श करती, टच डिवाइन, और कुछ नहीं, अचानक आपको हृदय में एक जॉय मिला। कई बार लोग पूछते हैं आश्रम में क्या मिला, मैंने कहा बाकी छोड़ो, एक चीज इंस्टेंटली मिल जाती है, क्या मिलती है? मैंने कहा जॉय, खुश रहना, अचानक पता नहीं क्यों खुशी मिल जाती है। अब वो और है कि हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि वो भी ना मिले, डिजायर तो पीछा नहीं छूटते, आपको फ्री में खुशी मिल गई तो प्रॉब्लम होती है, आपको तो खुशी नहीं होनी चाहिए ना, तो कोई डिजायर आएगा पकड़ेगा आपको केकड़े की तरह, डिजायर जाए वहां खुशी कहां मिलेगी। तो द ग्लैडनेस दैट द फ्यूजिटिव मोमेंट गेव, इनके लिए लेकिन क्या होती थी, टच डिवाइन अलग चीज है, यहां अभी बस ग्लैडनेस दैट द फ्यूजिटिव मोमेंट, ये खा लिए, उससे मिल लिए, थोड़ी गप मार ली, थोड़ा ये हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, यही आम व्यक्ति का जीवन है, यही है। द डिजायर ग्रेस्ट द ब्लिस द एक्सपीरियंस वन, मूवमेंट एंड स्पीड एंड स्ट्रेंथ वेयर जॉय एनफ। बुलेट ट्रेन में बैठ के गए हम, सिंगापुर हमने जाके देख लिया, तो क्या हो गया भाई देख यही चीज है उनका जॉय है, वो फला फला होटल वहां पे उन्होंने भोजन खाया, ठीक है खाया एक मिनट आपको अच्छा लगा, पर उसको लेके वो कैरी करते हैं, याद रखते हैं, स्मृति में आती है। भगवान के क्या क्या स्पर्श हुए, किसे पूछो कि अच्छा थोड़ा ये बताइए कि कब कब आपको ऐसा लगा कि अकारण एक शांति और जॉय याद करें। हाँ एक बार जब मैं आश्रम आया था, आप पूछो अगले पिछले 10 दिन में क्या क्या अच्छा लगा, वो बता देंगे आपको, किसी ने आपको क्या कहा, कहीं जाके भोजन किया, कहीं गाड़ी में बैठे, एंड बॉडीली लॉन्गिंग शेयर्ड, एंड क्वारल एंड प्ले एंड टीयर्स एंड लाफ्टर एंड द नीड कॉल्ड लव, यही था जीवन। यहाँ लव नॉट इन द हाइएस्ट सेंस बट नीड, प्यार एक नीड नहीं होती है, सबसे बड़ी अजीब लगता है, प्यार नीड नहीं है, प्यार तो एक प्यास है, अंतर है दोनों में, और ये प्यास कोई मनुष्य नहीं बुझा सकता, क्योंकि ये प्यास वास्तव में अनंत की प्यास है। नीड क्या होती है, भूख लगी, नीड है आपको संतुष्टि मिल गई, किसी ने मैसेज भेज दिया, दो क्या हार्ट बना करके नीचे लिख दिया आई लव यू, फिर आप उससे संतुष्ट नहीं हो कुछ दिन चलेगा, उसके बाद आप बोलेंगे डू यू लव मी ओनली, क्योंकि अब रोज तार वो भेजने वाला भी बेचारा परेशान होगा ना, तो डू यू लव मी ओनली, अब वो क्या कर रहा है ना बंदा, हैम हॉक कर रहा है, कह रहा है कि वेल यस अब शुरू हुई कहानी दूसरी कहानी फिर तीसरी कहानी लेकिन एंडलेस कहानी। तो वहां क्या होती है, नीड, क्यों ये चिंता होती है, चिंता होती है कि ये नहीं रहा तो मेरा क्या होगा, और अब भगवान के नहीं, ये रियलिटी है जीवन लाइफ की, पर अगर आप भगवान के प्रति खुले हो तो आप किसी पर आश्रित नहीं है, नीड नहीं है वो, वो तो थर्स्ट है, कैसी थर्स्ट है कि बुझाए ना बुझे और लगाए ना लगे, इश्क पर जोर नहीं है ये आतिश वो गालिब, आई डोंट नो गालिब नहीं लिखा है, ऐसा कहाँ से लिख दिया उसने आई डोंट नो, पर इश्क पर, क्योंकि वो रोमांटिक पोएम से मे बी सम स्पिरिचुअल, इश्क पर जोर नहीं है ये आतिश वो गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। ये लग गया तो भगवान के अलावा वो व्यक्ति या तो भगवान बना दोगे आप उसको वो बेचारा बन जाएगा, सब कुछ करेगा आपके लिए, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी पर वो भगवान बन जाएगा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, या फिर भगवान से ये प्यास बुझेगी। तो यहां पर नीड कॉल्ड लव, देखिए कितनी सुंदर लाइन है, एंड टीयर्स एंड लाफ्टर, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, एंड द नीड कॉल्ड लव, इसी को लोग जीवन कहते हैं, ये है लिटिल लाइफ। इन वार एंड क्लैश दीज लाइफ वॉन्ट्स जॉइंट द ऑल लाइफ, कभी कभी ये जो आइसोलेटेड ग्रुप्स हैं ये ज्वाइन करते थे, कब, जब एक और उससे लड़ना है बड़ा एनिमी, तो दे ज्वाइन टुगेदर, रेसलिंग्स ऑफ ए डिवाइडेड यूनिटी, यही तो कह रहे थे ईरान के शाह मुस्तफा या जो भी थे, इस्लामिक वर्ल्ड साथ हो, उनको पता नहीं एक दूसरा असुर ने खेल खेल लिया ऑलरेडी, उसने सबको पैसों पे खरीद लिया अमेरिका ने बेसिस बना लिए, यू सी दिस इज द गेम प्लान। ईरान और अमेरिका एक समय साथ थे, हम सब जानते हैं, इनका कोई लव लॉस्ट नहीं है, पर जब इन्होंने देखा कि ईरान में आया तो ये समझ गए थे कि ये ग्रुप्स बनाएंगे, बनाए उन्होंने हुतु इसके इसके यमन सब बनाए, तो इन्होंने कहा ठीक है तुम्हारे पास तो इस्लाम है हमारे पास तो पैसा है, बना लिया उन्होंने, कुछ नहीं हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे ये देंगे वो देंगे, बनने ही नहीं दिया उन्होंने, एंड दे वांट मनी, मनी के पीछे। तो इस तरह से वो लार्जर ग्रुप्स बनते हैं और उसके बीच में लड़ाई होती है। चाइनीज की यही स्ट्रेंथ भी है और उनकी प्रॉब्लम है, ये सब कुछ एक जैसे हैं, बड़ा मुश्किल है इनको किसी के साथ ग्रुप बनाना ये कोशिश करते हैं कि कम्युनिस्ट ब्लॉक बन जाए, कोशिश की इन्होंने एक दिन, एक समय कम्युनिस्ट ब्लॉक बना था रूस के साथ चीन, ये कोशिश यही करते हैं क्योंकि अब कैसे करेंगे अदरवाइज, लेकिन बाकी सबके पास और भी यंत्र हैं या अस्त्र शस्त्र हैं जिससे ये एक सूत्र में बांधने की चेष्टा करते हैं। रेसलिंग्स ऑफ ए डिवाइडेड यूनिटी, आपस में झगड़ा कर रहे हैं लेकिन साथ हो गए, ईरान और ओमान किसके अगेंस्ट खड़े होंगे, अमेरिका, लेकिन अब वो ओपनली नहीं खड़े हो सकते, पाकिस्तान और ईरान, देखिए अभी उन्होंने एक इस्लामिक वो भी बना लिया नेटो, तो ये टर्की सब मिल करके, बिकॉज दिस इज रेसलिंग ऑफ ए डिवाइडेड यूनिटी, इन्फ्लिक्टिंग म्यूचुअल ग्रीफ एंड हैप्पीनेस इन इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ फॉर एवर वन। उनको आप बोलोगे भैया एक ही है, वो कहेंगे कहते क्या उसको, खुदा बोलते हो तो आई एम इन, भगवान बोलते हो तो आई एम आउट, ये प्रॉब्लम है। आर्मिंग इट्स क्रीचर्स विद डिलाइट एंड होप, अब यहां डिलाइट वर्ड हाइएस्ट सेंस में नहीं है, जिसको आमतौर पर मनुष्य कहता है डिलाइट, आर्मिंग इट्स क्रीचर्स विद डिलाइट एंड होप, डिलाइट क्या, पैसे मिल गए आपको, एक बंगला मिल गया और आशा की अभी और मैं और कमाऊंगा और अपना ऐसा ग्रुप बनाऊंगा। ए हाफ अवेकेंड नेसियंस स्ट्रगल देयर टू नो बाई साइट एंड टच द आउटसाइड ऑफ थिंग्स, भाई केवल बाहर बाहर से चीजों को समझना, यही उनके जीवन में लक्ष्य था। अभी आई एक ईरान की महिला ईरानियंस और अभी लाई, मेरा उन्होंने इंटरव्यू भी लिया, तो पूछ रहा था, बोली कि मेरे पिताजी ने कहा ये बचने वाला नहीं है, यहां से बस चली जाओ। सो नाइस सी केम, सच ए वंडरफुल, माँ की बच्ची है और खुली हुई है माँ के प्रति, पर वो बताया जब उसने, ये इनसाइड स्टोरी तो मालूम ही नहीं लोगों को, वो बाहर का युद्ध देख रहे हैं, वहां आपको जीना मुश्किल है अगर आप नहीं मानते हो जो तौर तरीका इस्लामिक रिवाज और वो नहीं, इफ यू डोंट नो यू कैन नॉट एग्जिस्ट लिव देयर, मतलब आपको यही तो पाकिस्तान में दूसरे कारण से, तो ये नहीं कि अमेरिका उसको चेंज करने के लिए आया, लेकिन भगवान की ये पॉलिसी है ना पुरानी, अच्छा असुरों को ही आपस में लड़ा दो, क्योंकि वो उनका यही तरीका है, वो दैट्स हाउ दे फाइट एंड डिस्ट्रॉय ईच अदर। देख के, जो लोग देख के आपको जज करते हैं, यहां टच से क्या है, थोड़ा और करीब आ गए. टच इज नियरर, साइट इज. जिन्होंने आपके बारे में कुछ सुना, वो बहुत खराब है बहुत या बहुत अच्छा है जो भी, और आप उन्होंने आपको ऊपर बिठा लिया या नीचे गिरा दिया. या टच करीब जा करके जो बाहर से आपको मालूम है कि उसके हृदय में क्या चल रहा है. मैं तो कभी कभी पूछता हूं, आप अंतर्यामी होगे कि आपको पता है उस व्यक्ति के हृदय में क्या हो रहा था, उसके विचारों में क्या चल रहा है. यू विल नॉट नो टिल यू नो द इनर. और सच सबसे बड़ी बात एस्पिरेशन, मनुष्य की पहचान उसके अंदर की अग्नि है, उसकी एस्पिरेशन क्या है. अनलेस यू नो दैट देर इज नो वे यू कैन. एस्पिरेशन अग्नि है तो विभीषण जैसा असुर भी महान है. अग्नि नहीं है तो रावण जैसा पंडित भी व्यर्थ है. तो यहां पर मुख्य चीज वही है. इंस्टिंक्ट वॉज फॉर्म्ड इन मेमरीज क्राउडेड स्लीप द पास्ट लिव्ड ऑन एज इन ए बॉटमलेस सी. इंस्टिंक्ट क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, मेमरी की नींद से. हाँ ऐसा हुआ था, हमने सुना था, हमारे दादाजी ने भी बताया था, दादाजी के दादाजी ने भी बताया था. वो इंस्टिंक्ट आपकी बन गई है अंदर में, ऑलरेडी कंडीशन हो गया. उस इंस्टिंक्ट पर आप एक्ट करोगे. इनवर्टिंग इन टू हाफ थॉट द क्विकेंड सेंस शी फेल्ट अराउंड फॉर ट्रूथ विद फंबलिंग हैंड. शी कौन है यहां पे, लिटिल लाइफ. तो वो फंबलिंग हैंड श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी उसी इंस्टिंक्ट के आधार पर वो जीवन के सच को समझने की चेष्टा कर रही है. क्लस टू हर द लिटिल शी कुड रीच एंड सीज एंड पुट असाइड इन हर सबकॉन्शियंट केव. जो थोड़ा मिला उसको लेके उन्होंने बटोर लिया, जमा कर लिया. कहा वो भी खो गया विस्मृत कहीं, लेकिन वो सबकॉन्शियंट अवचेतना में. सो मस्ट द डिम बींग ग्रो इन लाइट एंड फोर्स एंड राइज टू हिज हायर डेस्टिनी एट लास्ट. अब यहां पर एक नया मूवमेंट शुरू हो रहा है, एक नई गति. यहां स्टैंजा चेंज नहीं हो रहा, पैराग्राफ तो चलते जा रहे हैं, लेकिन यहां पर नई चीज. ये क्यों आया, ये जो स्तर है ये पहला कदम है. आप एक लेवल से दसवें तक छलांग नहीं लगा सकते हैं. तो जीवन पहले इस तरह से प्रारंभ, जैसे क्रॉल करता है, जल में निकल होता है, फिर जल से बाहर निकलता है, फिर वो रेंगता है, फिर वो सिर उठाता है, हुड कोबरा, उसके बाद उड़ता है, फिर वो कहता है भाई मेरी ऊंचाई तो सीमित है, मुझे तो मंगल ग्रह जाना है, तो नीचे आता है, पशु के अंदर प्राण लेके इमेंस वाइटैलिटी लेके आता है, फिर मनुष्य बनता है, मनुष्य के बाद अब वो अल्टीमेटली मंगल ग्रह जाएगा, उसके बाद वो कहेगा अंदर के मेरे जो बाग बगीचे वो देखूंगा. तो ये प्रोसेस है, इसलिए ये स्तर जरूरी है. सो मस्ट द डिम बींग ग्रो इन लाइट एंड फोर्स एंड राइज टू हिज हायर डेस्टिनी एट लास्ट. इसलिए इनका अपना स्थान है, भगवान देखभाल कर रहे हैं. लुक अप टू गॉड एंड राउंड एट द यूनिवर्स. पहले उसका भगवान ऐसा ही होगा जो दूसरों को पनिश करेगा आपको, बिकॉज वो इससे आगे नहीं कंसीव कर सकता है, वो पागल हो जाएगा. अगर आप बोलेंगे सर्वकलविदम ब्रह्मन, वो कहेगा नहीं 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 नहीं, वो हुआ था जापान में, जब माने किसी एक जापानी को बताया कि भगवान सब में है, सब जगह है, तो वो थोड़ी देर में विक्षिप्त होके भागने लगा. कहता नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूं, मेरे लिए तो मेरा देश ही भगवान है. क्योंकि बहुत वो होते हैं ना देश से, बहुत ही कुंट एक्सेप्ट कि देर इज अ पॉसिबिलिटी. उनको एक्सपीरियंस दिया था माने, एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ द इन्फिनिट इन द फाइनाइट. एक दूसरा था डेनिश व्यक्ति, उसको भी माने ये अनुभव दिया था. उसने कहा आई एम लूजिंग माई माइंड, लूजिंग माई माइंड. इसलिए ये लंबी यात्रा होती है. ऐसे नहीं भगवान ने मैजिक दे दिया, दे सकते हैं और अंत में मैजिक ही होता है, लेकिन अगर प्री मेच्योरली ये अनुभव आ गया तो हम विक्षिप्त हो जाएंगे. Therefore, he must grow and learn by failure and progress by fall and battle with environment and doom. He learn by failure and progress by fall. एक जगह माँ हंसी हंसी में कहती है कि मैं कितना लोगों को समझाती हूँ कि मानवीय प्रेम अल्टीमेट नहीं होता है, लेकिन लोग ये कहते हैं नहीं मेरा वाला जो ये वाला प्रेम है ये पक्का है. कहते मैं कहती हूँ ठीक है जाओ, आप अनुभव के बिना उसको लगता है शायद कुछ अधूरा छोड़ गया, वो तो अल्टीमेट था निश्चित रूप से. तो मदर अलाउज अस टू गो. ये किसी ने पूछा कि आप इतनी फ्रीडम क्यों देते हैं, कहते विदाउट फ्रीडम यू कैन नॉट फॉर्म सुपरमैन, क्योंकि तब वो आपके जीवन के अंदर बैठ जाता है. चार पांच एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तब आपको पता चलता है ओके पहले आप डिवाइन को ढूंढो, फिर प्रेम करो. तब आप प्रेम किसी से मांग नहीं रहे हो, आप दे रहे हो. यू आर ए गिवर. एंड लर्न बाय फेल्योर एंड प्रोग्रेस बाय फॉल एंड बैटल विद एनवायरमेंट एंड डूम. माँ ये कहती है कि तुम यहां आओगे तो यहां और बड़ा युद्ध लड़ना पड़ेगा, इसलिए जीवन से भाग करके आश्रम में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां तो आपको अंदर अपने युद्ध है, अनसीन ओपोनेंट है. तो पहले बाहर में तो सीन है कि भाई आपको कमाई इसके लिए करना है, लोगों से जो भी चैलेंज ऑफ लाइफ, पर यहां आओगे तो आपको युद्ध आपके अंदर होगा. वहां तो एक ही वाइफ है जो आपको परेशान करती है, यहां तो ना जाने कितनी प्रकृतियां आ जाएंगी, क्या क्या रूप धर के. तो यू हैव टू गो थ्रू दैट चैलेंज. ये चैलेंज है. एंड राइज टू हिज हायर डेस्टिनी एट लास्ट, लुक अप टू गॉड एंड राउंड एट द यूनिवर्स एंड लर्न बाय फेल्योर एंड प्रोग्रेस बाय फॉल एंड बैटल विद एनवायरमेंट एंड डूम बाय सफरिंग डिस्कवर हिज डीप सोल and by possession grow to his own vast. Pida, sab jante ho kya kehta hai. Suna tha, andar mein koi hota hai, bhagwan andar hota hai. Ek baar dhundi lo, kyon? Kyonki jeevan usko itne thappad lagata hai. Ante mein kehta hai, sab jagah se ki main dhundu andar mein bhagwan ka hai. Aur tab kya milta hai usko? Vast. Kavita hai na Tagore ki. जाके तुम्ही बहिते चाहो अपार प्रेमे भार, एके बारे सबई तुम्ही घुछाए दाओ तार. ना थाके तार मान अपमान, ना थाके तार धन, सब छीन लेते हो. क्यों? उसके पास ऑप्शन नहीं बचा. क्योंकि किसी से कोई मेरा दुख दर्द बांटे बचेगा नहीं. आप जहां बांटने जाओगे वो और पेन देगा. तो अंत में आप क्या कहोगे? मालिक एक तेरा ही सहारा है. और तब जब आप उसमें कनेक्ट होते हो तो पूरे वास्ट में, ब्रह्मांड में आप उन्हीं को पाते हो. मित्र में भी, शत्रु में भी, जो सो कॉल्ड आप समझते थे, सब केवल आपके अपने, क्योंकि वो भगवान के अपने होते हैं. एंड बाई पोजेशन ग्रो टू हिज ओन वास्ट. हाफ वे शी स्टॉप्ड. अब शी यहां पर आ गया फिर से, ये शुद्र जीवन. हाफ वे शी स्टॉप्ड एंड फाउंड हर पाथ नो मोर. यही होती है चक्री में घूम जाना. कहा है ना इन्होंने, कबीरदास ने, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई. वो चक्कर जैसा, वो घूम, सारे जीवन आप घूमते रहोगे, 100% कुछ नहीं मिलेगा, कोई सेटिस्फेक्शन जॉय लास्टिंग नहीं मिलेगा. एक ही सोर्स है उसका, अल्टीमेटली द डिवाइन विद इन यू. और जब उनको ढूंढ लोगे तो सब में मिलेगा, सब जगह मिलेगा. प्रॉब्लम यह है, लेकिन लोग कहते हैं अच्छा अभी हम एक ट्राई और कर ले. भगवान कहते ओके, उसी में सारा जीवन चला जाता है. और फिर कहते हैं हमको कुछ नहीं मिला, कोई साधना नहीं कर रहा है. नहीं, सब कर रहे हैं, सब पा रहे हैं, जो जो कर रहे हैं वो पा रहे हैं. लेकिन आपकी प्रॉब्लम है कि आपने समय गंवा दिया. तो यहीं पर उसकी बात है. स्टिल नथिंग वॉज अचीव्ड बट टू बिगिन येट फिनिश सीम द सर्किल ऑफ हर फोर्स. फिर बाद में स्पेंट फोर्स की तरह रिटायर्ड साधक, मतलब रिटायर्ड मैंस लाइफ. हाँ रिटायर्ड, हाँ ठीक है. फिर वो आप पास्ट में, हम ये करते थे इस डिपार्टमेंट, क्योंकि आप आगे, अग्नि क्या होती है, आपको आगे ले जाती है. इवन एट 96 देखो माँ आगे की सोच रही है, क्या प्रचंड अग्नि है. व्हाट एन एग्जांपल शेयरविंद. इवन एट 78 वो ये सोच रहे हैं कि लाना ही है सुपरामेंटल, कैसे करूंगा. ओके, अगर देह त्याग के मार्ग से तो ये भी स्वीकार है. तो अग्नि धीरे धीरे, व्यक्ति ठीक है, वही आपके सीमित इंटरेस्ट मित्र, इसी में आदमी उलझ जाता है. ओनली शी हैड बीटन आउट स्पार्क्स ऑफ इग्नोरेंस, ओनली द लाइफ कुड थिंक एंड नॉट द माइंड, ओनली द सेंस कुड फील एंड नॉट द सोल. स्पार्क्स ऑफ इग्नोरेंस, उसको चिंगारी को बीट करने से आग नहीं जलती है, पर करते हैं ना लोग, थोड़ा बहुत ददक जाती है. अग्नि है तो थोड़ी चिंगारी करते हैं ना लोग, थोड़ी हवा हवा आती है उसमें से थोड़ी आग निकल आए. इसी को करते रहे पूरे जीवन. सम जॉय टू बी, सम रैप्चरस लीप्स ऑफ सेंस. थोड़ी खुशी, थोड़ा सेंस लैप्स. अरे कितना अच्छा लगा, आज विशेष दिन है, सजाया जाएगा. इसी में विशेष दिन तो रोज होना चाहिए, हर मुहूर्त होना चाहिए कायदे से तो. लेकिन चलो कल स्पेशल डे है, उसमें भी लोग क्या देखते हैं, डाइनिंग रूम में बर्फी बन रही है कि नहीं, अंत में दर्शन डे का सिग्निफिकेंस, खीर बहुत अच्छी बनी. अब क्या कह रहे लोगों की सीमा है ना, एटलीस्ट दैट डे. जबकि होना ये चाहिए कि रोज दर्शन डे होना चाहिए. ये शेरविंद की वाणी है, एवरी डे कैन बी ए दर्शन डे, शुड बी. भगवान से जब आपका की मुलाकात हुई, उन्हें लिखा है, ऑल वॉज एन इम्पीटस ऑफ हाफ कॉन्शियस फोर्स, ए स्पिरिट स्प्रॉलिंग ड्राउंड इन डेंस लाइफ फोम. स्पिरिट स्प्रॉलिंग, उछल रही है, कूद रही है, लेकिन केवल प्राण के उसमें फोम के अंदर, तो बाहर भी सिर नहीं उठाया उसने. ए वेग सेल्फ ग्रेस्पिंग एट द शेप ऑफ थिंग्स, बाहर बाहर से चीजों को देखना समझना. बिहाइंड ऑल मूव्ड सीकिंग फॉर वेसल्स टू होल्ड ए फर्स्ट रॉ विंटेज ऑफ द ग्रेप्स ऑफ गॉड. क्या लाइन है, देखिए क्या कह रहे हैं श्री अरविंद. ऑन अर्थ्स मड ए स्पिल्थ ऑफ द सुपरनल प्रेस, वेसल्स टू होल्ड. वेसल्स कौन, मनुष्य. कोई मिल जाए, कुत्ता ही मिल जाए, चलो मनुष्य तो नहीं मिलेगा, ओबीडियंट मनुष्य, कुत्ते ही मिल जाए. वेसल्स टू होल्ड वॉट, ए फर्स्ट रॉ विंटेज ऑफ द ग्रेप्स ऑफ गॉड. वाइन जो निकलती है ना आनंद की, रॉ विंटेज, प्योरिफाइड नहीं है, थोड़ा छलक के. यही है ना कहानी सागर मंथन की, तो कहते ना प्रयागराज में गिरी, तो लोग वहीं पर चल के चलो उनको कुछ तो मिल जाए. अंदर की साधना, सुषुम्ना नाड़ी को जगाना, ये तो बड़ा कठिन है ना, गंगा यमुना सरस्वती, लेकिन कम से कम नहा के वो उतनी काफी है. रॉ विंटेज ऑफ दी वाइन ऑफ गॉड, ग्रेप्स ऑफ गॉड, ऑन अर्थ मड इज स्पिल्थ ऑफ दी सुपरनल ब्लिस. ये वही कहानी है वो प्रयागराज में, जो इंटॉक्सिकेटिंग द स्टुपेफाइड सोल एंड माइंड, ए हेडी वाइन ऑफ रैप्चर डार्क एंड क्रूड, उसने ही मनुष्य झेल सकता है. भाई एक बार हम चले गए महाकुंभ होकर के आ गए, एक बार हम मक्का चले गए होके आ गए. असल चीज तो है कि अंदर की जो जगह, अंदर में आनंद आप अनुभव करो, अंदर में भगवान, वो बहुत कठिन है. इट इज डिफिकल्ट, वेरी एग्जैक्टिंग. दिस इज ईजी, इसी को लोग याद करते हैं, फोटो देखते हैं, उस पर वो होती है उनकी, अरे हम भी गए थे, बड़ा अच्छा लगा था, तब गए थे हम. ठीक है, अब अंदर वाला भी तो कर लीजिए ना दर्शन. तो ये है डार्क एंड क्रूड, डिम अनकास्ट येट इनटू स्पिरिचुअल फॉर्म. जो जीवन है वो अभी भी स्पिरिचुअल फॉर्म नहीं लिया था उसने. ऑब्सक्योर इनहेबिटेंट ऑफ द वर्ल्ड्स ब्लाइंड कोर, इस संसार के अंधे कुएं में इस प्रकार का जीवन पल रहा था. देखिए लोग इसको जीवन समझते हैं, कि बोलते हैं ना, किसी एक बार किसी ने पूछा मुझसे, कहता है ये जो आनंद होता है जैसे वाइन लेके बड़ा मजा आता है, तो ये वैसे ही कुछ जॉय होता है, कैसा होता है? तो ना देखो भैया, मैंने वाइन भी ली है और डिवाइन भी लिया है, तुमने खाली वाइन ली है, तुमको मैं कुछ भी समझाऊंगा तुम वाइन की वैल्यू में ही समझोगे, पर मैं बस इतना बता सकता हूं कि ये कीचड़ का आनंद है, वो आकाश में भी चढ़ने का आनंद है. नहीं समझ आएगा, क्योंकि वो वही समझते हैं कि लोग आकर के भी, यहां भी लोग वाइन ढूंढते हैं ना, वाइन एंड डिवाइन. ऑब्सक्योर इनहेबिटेंट ऑफ द वर्ल्ड ब्लाइंड कोर, बहुत मिलेंगे आपको आश्रम के आसपास खड़े हो, क्या ड्रेस पहन के, और कई बार तो पता नहीं छतरी होती ना वो लेकर के आते हैं, लाइट वाइट जला के फोटो लेते हैं, छतरी पता नहीं क्या करते हैं, अम्ब्रेला नहीं होता है वो, रिफ्लेक्टर कुछ होता है, फोटो ले रहे. मुझे तो बड़ा मजा आता है, कुछ लोग उन पर गुस्सा होता है, अरे यार पप्स हैं जो छोटे मोटे होते हैं, छोटे मोटे कुत्ते, वो पप्स घूम रहे, उनको आप क्या समझाओगे, उनको क्या समझ आएगी, वो बोल देंगे सॉरी और चले जाएंगे कहीं और, ऐसे ऑन द हाउस हैं ये, उनके जीवन में यही, वो उनको यही सुखा रहा है कि ये बिल्डिंग बड़ी अच्छी है आश्रम की, उनके लिए आश्रम और बगल वाली बिल्डिंग में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये बिल्डिंग हाँ अच्छी लग रही, कोई चीज शायद ऑब्सक्योरली फिर यहां फोटो खिंचाएंगे, उनको इतना ही समझ आता है. बालकनी तो बड़ी हमारी इम्पोजिंग है भी, उनका फेवरेट स्पॉट है, क्यों, अरे क्या बैल्कोनी है, क्या बिल्डिंग है, दरवाजा है, बैकग्राउंड है, अरे मूर्खों, उनको इससे आगे कुछ नहीं लेना देना है. ठीक है, अब वो अब क्या कहा जाए, नहीं पता है, तैयार नहीं है, और अंदर जाएंगे तो उनको नहीं समझ आएगा, कहेंगे बाहर बड़ा अच्छा है, अंदर में क्या है, वो एक वो कुछ है स्टोन से बना हुआ, वहां जाके लोग प्रणाम, उनको उससे आगे नहीं समझ आएगा क्योंकि वहां फोटो अलाउड नहीं है। समाधि भी ऐसे नहीं है कि वहां पे एकदम प्योर वाइट मार्बल हो ना, नीचे मार उबड़ खाबड़। कई बार लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों, मैं कहता हूं बिल्कुल सही है, मां ने कोई चीज ऐसे नहीं करी है। वहां जाके आप अगर अंदर से कनेक्टेड हो तभी आप जाओगे। अगर आप मॉन्यूमेंट के लिए देखना चाहते हो तो ताजमहल है, ये मॉन्यूमेंट नहीं है। सी लुक एट द मार्बल, वेरी ऑर्डिनरी, मतलब अच्छा होगा लेकिन नॉट लाइक। फर्श को भी आप देखिए, नीचे वो पेड़ कभी कभी खोदना पड़ता है, वो कट रहा है। वहां जाके आप केवल और केवल भगवान से मिलने जा रहे हो। तो बाहर जो कर रहे हैं उनको अगर आपने गलती से भी एक बार अंदर वो आके देख, उनको समझ नहीं आएगा। लोग समाधि के पास आके एक बार अमल किरण बता देना, उनसे पूछा कि भाई टी शर्ट कहाँ मिलती है, मेरे से भी पूछ चुके हैं लोग। अब आप उनको क्या बोलोगे, क्योंकि वो टी शर्ट चाहिए, उनको खोजने दो। तो ये है अंतर इस जीवन का, अंधकार में जी रहे हैं लेकिन इनके लिए भी आशा है। पूरे शेरविंद स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ये जीवन कैसे इवॉल्व करेगा। ऑब्स्क्योर इनहेबिटेंट ऑफ द वर्ल्ड्स ब्लाइंड कोर एंड अनबॉर्न गॉड हेड्स विल अम्यूट डिजायर। देखिए उसके अंदर कोई डिजायर है, डिजायर विद ए कैपिटल डी। वो खुद नहीं जानता क्यों आया यहां। लोग है ना बहुत दुखी हो रहे हैं और सबको दुखी कर रहे हैं, मगर बोलो भैया तुम चले जाओ, नहीं हम क्यों जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक म्यूट गॉडहेड्स विल है। वो नहीं जानते कि क्यों आए हैं, कोई चीज है जो उनको लेके आई है। एन अनबॉर्न गॉडहेड्स विल, हो सकता है इस जीवन में जन्मे या अगले जीवन में। प्रहलाद जो लक्ष्मीबाई का घोड़ा था यहां पर आया था, माँ ने बताया ही वह लक्ष्मीबाई हॉर्स और उसका पहला जन्म था। अब घोड़े के रूप में तो उसने कमाल किया था, अब पहला मानवीय जीवन उसको प्रमोशन मिल गई, घोड़े से ना जाने किससे किससे उजड़ता छलांग, आश्रम में भी आ गया क्योंकि कहते हैं कि माँ रानी लक्ष्मीबाई में उनका एक अंश था। तो खैर आया तो 32 साल की उम्र में एक चिट्ठी लिखा, उसकी सोच समझ चलने का तरीका सब लोग बताते हैं घोड़े की तरह था। तो उसने एक बार माँ को चिट्ठी लिखी, मदर आई वॉन्ट टू मैरी एन अमेरिकन वाइफ। माँ ने उत्तर दिया, नॉट इन दिस लाइफ। दो दिन बाद डेथ हो गई। तो वो भाई ठीक है चल तेरे को ग्रांट। तो वो अब वो क्या है, कोई ब्लाइंड विल काम कर रही है, इसलिए तो आया ना, उसकी डेस्टिनी लेके आई। माँ ने उसका नियति हो गई है क्लियर, लेकिन इस टू गो थ्रू द प्रोसेस। आप छलांग नहीं लगा सकते हो, इसीलिए लोग अक्सर आश्रम में चले आओ, बहुत लोगों बुलाना या अरे बहुत अच्छी जगह है, ये शुड नेवर बी डन। एक लंबी यात्रा के बाद व्यक्ति तैयार होता है। उस यात्रा का अगला पड़ाव हम लोग नेक्स्ट संडे तो नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे पढ़ेंगे। आई डोंट नो नेक्स्ट संडे हो भी सकता है, एनीवेज विल अनाउंस जा रहेंगे। नहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे। ओके, जय माँ जय मा।